फिर इसके बाद अब आप देखें कि हिजरी कैलेंडर शुरू हो जाता है। आप यहाँ से भी एक बड़ा अहम नुक्ता लोगों को बता सकते हैं कि हमारा हिजरी कैलेंडर कब से शुरू हो रहा है, जिसको इस्लामी कैलेंडर हम कहते हैं ना, हिजरी कैलेंडर क्यों कहते हैं? फिर उसको नबवी कैलेंडर कह के अल्लाह के नबी की मोहम्मदी कैलेंडर कह दें आप, 571 ईस्वी के साथ नंबर एक कर दीजिए। नहीं, जिस दिन हिजरत की उससे हुआ है, और ये कब फैसला हुआ था? नबी सल्लम के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आता है कि ये पहली दफ़ा हिजरी कैलेंडर बना। और जब फैसला हुआ कि क्या करें, किसी ने कहा कि आपकी विलादत के दिन से शुरू कर लेते हैं इस्लामी कैलेंडर का, नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर जिसे नबुवत मिली उस दिन से करते हैं, कहा नहीं वो तो हालात इतने बुरे थे उसमें तो कुछ कर ही नहीं सके हम। अच्छा चलो ठीक है, हाँ हिजरत से इस्लाम को इस्तेहकाम मिला था तो हम फिर हिजरी कैलेंडर तब से बनाते हैं। तो लिहाजा अब इससे आगे सारी डेट्स जो भी हैं वो हिजरत के साथ चलेंगी। फिर उसके बाद देखिए, 2 हिजरी में गज़वा अबवा हुआ, ये भी रबी अव्वल में हुआ था। आप में से ये भी किसी को पता, अबवा नाम का गज़वा भी फौरन ही हो गया था आपकी आते ही, मक्का में आते ही, यानी ये 2 हिजरी के, यानी तकरीबन 2 साल भी नहीं पूरे हुए थे कि उसके अंदर शुरू हो गया था। फिर गज़वा बबात, गज़वा सफ़वान, बदर उला, गज़वा ज़िल अशीरा, गज़वा बदल उल कुबरा, गज़वा बनु क़ैनका, गज़वा सुवैक। सुवैक जो ना, ये सत्तुओं को कहते हैं, सत्तू। इसमें दुश्मन जो थे वो बहुत सारे सत्तू छोड़ के भाग गए थे, तो मुसलमानों को माले गनीमत में जो मिले तो उससे फिर इसको गज़वा सुवैक कहा गया। फिर गज़वा बनु सुलैम जैसे अहम गज़वात पेश आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की तीसरी नाकाम कोशिश की गई। कितने साल हुए आपको एक नया मुल्क बनाए हुए? 2 साल। और कितनी जंगें लगीं दूसरे ही साल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तकरीबन 9 जंगें अगले ही साल लगी। हम कहते हैं कि पाकिस्तान बना, फिर उसके इतने साल बाद जंग लगी, हमारे रिसोर्सेज ही नहीं थे, हम कैसे अपनी कामयाबी लेते? जंगें नहीं जीतवाती। असल देखिए कि इतनी चोटें पड़े हैं एक अच्छी सी मुमलिकत पे तो क्या हालात होंगे। कौन सी चीज़ से वो बची? उससे बची कि जो हाथ था पीछे। अभी मैं एक इसकी आपकी तफसीर की तैयारी में वाकया पढ़ रही थी, तो मैं हैरान हो रही थी सहाबा कराम की बातों पे, कि अपने नाम सुना होगा कि हज़रत रबी थे, एक ये वो बच्चा है कि जिनका बाप थोड़े से पैसे दे के माँ को कहीं चला गया था और कई साल के बाद वापस आए थे, और बाद में आके उन्होंने माँ से पूछा कि क्या किधर हैं वो पैसे, तो कहा जाओ नमाज तो पढ़ाओ, तो वहाँ गए तो बेटा दर्स दे रहा था। बड़े खुश हुए ये किस खुशकिस्मत का बच्चा होगा। बाद में लोग उसको मिले, बाद घर आए तो पता चला अपना ही बेटा है, तो माँ ने कहा कि जो पैसे दिए थे वो ये हैं ना, इस बच्चे को तालीम दी। यही एक वक्त में जिहाद के लिए जा रहे थे और अपनी तलवार के ऊपर कपड़े की धज्जियाँ बांधी हुई थी, टूटी हुई तलवार थी, और रोमन्स को या किसी एक और था मेरे नाम से, किसी भी बड़ी ताकत के मुकाबले में लड़ने जा रहे थे, तो किसी ने इनको कहा, हंस के मजाक इनको उड़ाया, कहा कि इस तलवार से तुम लड़ोगे? तो इन्होंने कहा कि तुमने तलवार देखी है, तलवार के पीछे जो हाथ है वो नहीं देखा। देखना चाहते हो, लाओ फिर सामने आओ। कहा तुम्हारे पास जो मजबूत से मजबूत ढाल है ले आओ। कहते हैं दुश्मनों के पास जो सबसे मजबूत ढाल ऐसी जैसे लोहे की बनी हुई चीज़ें होती थी, कहा कि वो लाई, और इन्होंने इतने ज़ोर से तलवार मारी कि उनकी ढाल 2 हिस्सों में बट गई। इस तरह से इस्लाम फैलता। आज वो हाथ नहीं है, तलवारें बहुत हैं। अल्लाह अकबर। तीसरी दफ़ा आपको कत्ल करने की कोशिश नाकाम हुई। फिर सन 3 हिजरी में गज़वा गतफान, गज़वा नजरान, गज़वा अहद, गज़वा हमरुल असद पेश आए, और हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रदियल्लाहु अन्हुमा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए। आपको पता कि ये दोनों पहले से शादीशुदा थीं, तलाक हो चुकी थी हज़रत हफ्सा को भी, और हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा भी पहले से शादीशुदा थी और फिर आपके निकाह में आई। फिर सन 4 हिजरी में हादसे रजी हुआ और बैर माऊना हुआ। ये इतने ज़बरदस्त हादसे थे कि धोखे के साथ अल्लाह के नबी से 70 हुफ़ाज़े कुराम और उलमा को बुलाया गया, जो दीन जानने वाले थे, कि लाएँ जी हम दीन सीखना चाहते हैं। आपने खुशी खुशी चुने हुए लोगों को भेजा, 70 लोगों को कत्ल कर दिया। इतना आपको दुख था, 1 महीना तक आप बददुआ करते रहे उन कबीलों के बारे में कि इन्होंने इस्लाम पे इतनी गहरी चोट लगाई। आपको ये बातें सुनकर एहसास हो रहा है दीन के रास्ते की मुश्किलात का? हम तो कहते हैं ऐसे ही उंगली भी घुमाई होगी और इस्लाम आ गया। प्रैक्टिकली आप ज़रा सोचें, एक चोट ना पड़े, ख़त्म हो के दूसरी पड़ जाए, तो फिर कैसा दीन का काम होता है? हम तो पहली चोट पे परेशान होते हैं कि लगता है हमारा काम ही ठीक नहीं, हमारी तरीका ही नहीं ठीक, हमारी कोशिश नहीं ठीक, छोड़ दो, हमारी नीयतें नहीं ठीक। नहीं, ठीक करने के लिए नीयतें ये सारे हादसे होते हैं ताकि खोट जो वो निकल जाए। ये सारी जंगें ऐसे इस्लाम पे पड़ी थी और मदीना की नौमलूद रियासत थी। फिर सन 4 हिजरी के अंदर ये वाक़ा जब हुए तो उसके बाद उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा से आपका निकाह हुआ, फिर हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदियल्लाहु अन्हा इंतकाल भी कर गई। अब यहाँ से आप देखें कि आपकी बीवियों में से एक की डेथ हो चुकी है। फिर 5 हिजरी में गज़वा दूमतुल जुंदल, गज़वा बनु मुस्तलक, गज़वा अहज़ाब या खंदक जिसका नाम है, गज़वा बनु कुरैज़ा हुआ और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बुहतान यानी वाक़ा इफ़्क़ हुआ और हज़रत ज़ैनब बिनते हजश और हज़रत जुवैरिया से आपका निकाह हुआ। और ये सारे निकाह और जंगें आपस में बहुत मरबूत थी। कुछ शादियाँ आपकी इसलिए हुई कि किसी कबीले से जंग ना हो, इसलिए उनके दिल को मायल करने के लिए। कुछ शादियाँ इस तरह हुई कि जैसे औरतें वहाँ से कैदियों में आती थी तो आप उनको आज़ाद करके निकाह करके ये लोगों के दिल से बात निकाल देते कि ऐसी औरतें कोई कमज़ोर हैं। जैसे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी शादी हुई, हालांकि वो ग़ज़वा खैबर के माले गनीमत में आई थी। तो ये एक पूरा अलग टॉपिक है जिसकी यहाँ गुंजाइश नहीं है बात करने की। बहरहाल फिर सन 6 हिजरी में ग़ज़वा अरीनैन और सुलह हुदैबिया के वाक़ियात पेश आए और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। जानते हैं किसकी बेटी थी उम्मे हबीबा जी? आप बताइए किरण जी। शाबाश, अबू सुफियान की बेटी थी ये, और ये अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे और हुदैबिया की सुलह में आपको पता है क्या हालात हो रहे थे। और कभी को किसी दुश्मन के बेटी से भी शादी करते? हम कहते हैं नहीं, लड़की तो अच्छी है, घर वाले पता नहीं उनका कुछ और ही ख्याल है, हम नहीं करते शादी। नहीं, अल्लाह के नबी ने कोई बुरा नहीं समझा। और देखिए दुश्मनी कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लम से अबू सुफियान उस वक़्त कर रहा, इसलिए क्या कि उस वक्त कुफर पे थे, लेकिन बेटी दे दी रिश्ते में। ज़रा कोई आज इमेजिन कर सकता है? ये निकाह के ये तो वहाबी हो गया, इसको मैं बेटी क्यों दूँ, मेरी तो बेटी ज़ाया हो जाएगी। इससे समझें कि अल्लाह के नबी को किरदार की तरफ से बहुत पसंद करते थे। आपका करेक्टर उनको नहीं बुरा लगता था, पैगाम बुरा लगता था। वो छोड़ दो, बाकी तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। फिर 7 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया के नतीजे में जंग ना करने का माहदा हुआ तो आपने फिर इस मौके को गनीमत जाना। हम होते तो छुट्टी डिक्लेयर कर देते, सारे फौजी छुट्टी पे जाओ सारे, क्योंकि अब तो जंग होनी नहीं। आपने कहा अब जंग नहीं, अब दावत होगी। इस मौके पे फिर आपने दावती ख़त भेजे मुख्तलिफ बादशाहों के नाम, जिसके मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्स मिले। फिर ग़ज़वा गाबा, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा वादियुल क़ुरा और ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा पेश आए। आपको बकरी के गोश्त में जहर खिलाने की कोशिश की गई और हज़रत सफ़िया, हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हुमा से आपके निकाह हुए और सहाबे कराम के साथ उमरतुल क़ज़ा अदा किया। जिस 7 हिजरी के वाक़ियात थे, खुशियाँ गम साथ साथ चल रहे हैं ना, धूप छाँव लग रही है आपकी ज़िंदगी। फिर सन 8 हिजरी में ग़ज़वा मौता, ग़ज़वा फ़तेह मक्का, ग़ज़वा हुनैन या हवाज़न और ग़ज़वा ताइफ़ के वाक़ियात पेश आए और उम्मे कुलसूम बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। पीछे 2 हिजरी में आपकी दूसरी बेटी का इंतकाल भी हो चुका था, वो यहाँ जिक्र नहीं है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। सन 2 हिजरी में हज़रत रुकैया का इंतकाल हुआ था जो हज़रत उस्मान के निकाह में थी। हैरत की बात है, अल्लाह के नबी को 2 बड़ी खूबसूरत फतूहात मिली हैं। वैसे तो बहुत सारी मिली, लेकिन जिसको आप कह सकते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट किस्म की फतूहात, एक बदर की थी और एक तबुक की थी। और बदर की खुशी से वापस आए तो हज़रत उस्मान कब्र पे मिट्टी डाल रहे हैं अल्लाह के नबी की बेटी की इंतकाल उन पे, और जब ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे हैं तो दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल है। ऐसे लगता है कि आप खुश होते थे तो साथ ही चुप कर जाते थे, साथ ही खुशी साथ ही गम। फिर उसके बाद 9 हिजरी में दूसरे गैर मुल्की ग़ज़वा तबूक की मुहिम पेश आई। ज़िना का इनकरार करने वाली औरत को संसार किया गया, ये कबीला गामदिया की जो औरत थी, और मुख्तलिफ वफूद कबूल इस्लाम के लिए हाजिर खिदमत हुए, क्योंकि तबूक के सफ़र से इतनी धाक बैठ चुकी थी मुसलमानों की लोगों के दिलों में कि वो बिल्कुल इस्लाम से मुतासिर हो चुके थे। तब लोग गिरोहों में आना शुरू हो चुके थे, मक्का भी फतह हो चुका था। फिर सन 10 हिजरी में हज्जतुल विदा अदा फरमाया और 11 हिजरी में 29 सफ़र यानी सफ़र की 29th को पीर के दिन नबी सल्लम के मर्ज़े वफ़ात का आगाज़ हुआ। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर चार्ज के वक्त 63 साल 4 दिन की उम्र में आपकी रूह आपके जिस्म से निकल गई। और 14 रबी अव्वल बरोज बुध रात के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में आपकी तदफीन अमल में आपको वहाँ दफन किया गया। उस दिन मदीना की गलियाँ भी रो रही थी और तिनके भी रो रहे होंगे। हज़रत अनस कहते हैं कि मदीना की हिस्ट्री में सबसे खुशी का दिन वो था जब तला बद्र अलैना की सूरत में अल्लाह के नबी ने मदीना में नज़ूल फरमाया, और सबसे उदास दिन वो था जब अल्लाह के नबी वहाँ से रुखसत हो गए। किसी मेहमान के आने की खुशी होती है ना, साथ ही गम लग जाता है, हाँ इसने वापस भी जाना है, हर दिन लगता है इसने वापस जाना है। अल्लाह के नबी के सजे हुआ 3 दिन तक आपकी डेड बॉडी जो थी वो रखी गई आपके घर में। लोग थोड़े थोड़े लोग 10-10 लोग आते, आपकी चारपाई के इर्द गिर्द दुरूद शरीफ पढ़ते और चले जाते। फिर दूसरे आपका नमाज जनाजा मुश्तरक नहीं हुआ, आपको कफन दफन भी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ तरीके से दिया गया। और बड़े दिलसोज वाक़ियात थे इस मौके पर जो आप रही को मख्तूम में सुन सकते हैं। तो ये था एक खुलासा अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का। क्या लगा आपको? साथ साथ इंसान सोचता तो है ना, आज हम जो अल्लाह के नबी के बारे में सोचते हैं या जो उनसे हमारा ताल्लुक होता है, क्या उसमें इतनी चोटें इतने सदमे आते? ये सिर्फ चंद बातें ही मैं कहती हूँ आप लोगों को सुनवा देना तो यंग्स तो जो हैं वो रोने लगेंगे। मैंने सिर्फ एक पावर पॉइंट दिखाया वीकेंड क्लास में हमने परसों सैटरडे को, जिसमें नॉन मुस्लिम्स के व्यूज़ जो उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में बोली हुई बातें वो दिखा के थी। तो लड़कियां बाद में कहती थी कि हमें शर्म आ रही है कि हम तो इतना भी नहीं जानते आपके बारे में जितना नेहरू जानते थे, जितना गांधी जी जानते थे, और जितना बर्नार्ड शाह जानता था आपके बारे में, और जितना फलां और फलां जानता है, हम तो इतना भी नहीं जानते। जिसको आप जानते नहीं उससे प्यार क्या करेंगे? अरबी की एक कहावत है कि हम जिन चीज़ों को जानते नहीं उसके दुश्मन होते हैं। हमें पता ही नहीं ये कागज़ अहम है, हम फेंक देंगे, बाद में शौहर कहेगा वो तो इतने काम का था, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। आज हम इस दीन की कदर नहीं जानते, इस हदीस की कदर नहीं जानते, और इस कुरान की कदर नहीं जानते। अल्लाह हमारी आंखें खोल दें। कोई सवाल इस बात में या कहना चाहें तो आगे, नहीं तो हम छोटा सा आज एक और टॉपिक भी पूरा करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा अल्लाह के नबी सल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ऐसा मौजू है कि जिस पे बातें होती हैं। तो आप देखिए कि नबी सल्लम ने कुल 11 शादियां की पूरी ज़िंदगी में, जिसमें तरतीब पहले बता देती हूँ। हज़रत खदीजा से शादी हुई, फिर हज़रत सौदा से हुई, हज़रत आयशा से हुई, फिर हज़रत हफ्सा से हुई, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से हुई, फिर उम्मे सलमा से हुई, फिर हज़रत ज़ैनब बिनते हजश, दो ज़ैनब थी आपकी बीवियाँ, याद रखिएगा सरनेम का फ़र्क है सिर्फ, फिर उसके बाद हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस, उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान, हज़रत सफ़िया बिनते हुयै बिन अख्तब, और हज़रत मैमूना बिनते हारिस रदियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन। इन सब से अल्लाह राज़ी हो, इन से शादियाँ हुईं। अगर इसी तरतीब से आप आगे लिख लें तो हज़रत खदीजा बेवा थी आपसे शादी से पहले, हज़रत सौदा भी बेवा थी, हज़रत आयशा कुंवारी थी, हज़रत हफ्सा बेवा थी और मुतल्लिका भी थी, हज़रत खदीजा भी बेवा और मुतल्लिका दोनों थी, दो दफ़ा शादी हो चुकी थी पहले, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी बेवा थी, उम्मे सलमा भी बेवा थी, हज़रत ज़ैनब बिनते हजश भी मुतल्लिका थी, हज़रत जुवैरिया बेवा थी, हज़रत उम्मे हबीबा बेवा थी, हज़रत सफ़िया बेवा थी, और हज़रत मैमूना भी बेवा थी। कोई आ रहा है तसव्वुर में कोई रंगीलापन? इतनी औरतों का सहारा बनने वाला शख्स आज करता है कोई शादी? और अक्सर बीवी आपसे उम्र में बड़ी भी थी। फिर आप देखिए कि पहले शोहरों के नाम इसी तरतीब से अगर आप नोट करते जाएँ, एक चार्ट बना लें ताकि आप सारी चीज़ों को साथ लिखते जाएँ तो फ़ायदा होगा। हज़रत खदीजा के जो पहले शोहर थे वो हिंद बिन नबाश थे, ये मुल्क शाम गए थे तो वहाँ इनको कत्ल कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर नब्स तिजारत के लिए गए थे और बाद में फिर अल्लाह के नबी से इन आपका निकाह हुआ। हज़रत सौदा जो थे इनके शोहर का नाम सुकरान बिनते अमर था, इनके बारे में भी कुछ वाक़ियात हमें मिलते हैं। फिर हज़रत आयशा, इनके तो कोई पहले शादी नहीं हुई थी। हज़रत हफ्सा के पहले शोहर हज़रत हुनैस बिन खुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु थे, ये मुसलमान थे। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश साहमी रदियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत उम्मे सलमा के शोहर अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत ज़ैनब बिनते जाहश, ये असल में आपकी फूफीजाद बहन भी थी, इनकी शादी पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से हुई थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे भी थे, और बाद में फिर इनसे खुला लेकर ज़ैनब نہیں, تو پھر بعد میں اللہ کے نبی سے ان کی شادی ہوئی. اور ان کی شادی کے آگے آپ خاص بات لکھنا چاہیں کہ حضرت زینب کا نکاح آسمان پہ ہوا تھا, اللہ کے نبی کا دنیا میں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت عائشہ کی اگر ایک خوبی اوپر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ حضرت عائشہ کی تصویر جبرائیل نے آپ کو شادی سے پہلے دکھائی تھی, فخر کرتی تھی, اور حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت عائشہ سے شادی کریں. یہ دونوں بیویاں جب بیٹھا کرتی تو آپس میں فخر کرتی تھیں کہ دیکھو میرا رشتہ تو اللہ نے بھیجا تھا اور میری تصویر دکھائی تھی. تو حضرت زینب کہا کرتی تھیں کہ میرا تو نکاح بھی آسمانوں پہ ہوا تھا. پھر اسی طرح آگے آپ دیکھیں تو ام سلمہ, ابو سلمہ کی بیوی تھی زینب جی, حضرت جویریہ بنت حارثہ, ان کے شوہر مصافح بن صفوان تھے. پھر ام حبیبہ جو تھی, ان کے شوہر کا نام عبیداللہ بن حجش تھے, یہ بھی دوسرے ملک ہے, ملک شام کافروں کے ہتھے چڑھے تو مرتد ہو گئے تھے یہ. اللہ اکبر. پھر حضرت صفیہ, ان کے شوہر کنانہ بن ابی الحقیق تھے. آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہوا؟ حضرت صفیہ جب ان کے نکاح میں تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند ہے جو میرے گھر کے آنگن میں اترا ہے. یہ یہودیہ تھی نا پہلے, تو انہوں نے صبح اٹھ کے اپنے شوہر کو وہ خواب سنایا, تو شوہر نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے منہ پہ تھپڑ کا نشان تھا. جب شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو پھر انہوں نے یہ بات سنائی تھی, تو کہا کہ جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے تو اس نے زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ تو اس نبی کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے. یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہیں لیکن خود یہودیت پہ تھے. اسی طرح حضرت ام حبیبہ کے بارے میں بھی ایک خاص بات لکھ لیں کہ ان کا غائبانہ نکاح ہوا تھا. یہ حبشہ میں تھی, ہجرت کر کے گئی ہوئی اس وقت, اور جو بادشاہ تھا نجاشی حبشہ کا, اس نے 500 درہم کے عوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کیا تھا, اور جب یہ واپس وہاں سے آئیں تو پھر سیدھا ان کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا گیا تھا. اسی سے یہ جو فون پہ نکاح یا دوسری جگہ پہ نکاح ہونے کے دلائل میں ملتے ہیں. پھر اس کے بعد آخری حضرت میمونہ بنت حارث ہیں, تو یہ ابی دہم بن عبد العزیٰ کی بیوی تھیں پہلے سے. ان کی عمریں بھی ذرا دیکھتے جائیے اور غور فرماتے جائیے گا, بہت قابل غور نقطہ. اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. حضرت سودا کی شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر کے تھے اور سودا بھی 50 سال کی تھی. ذرا غور کریں, خدیجہ سے نکاح ہوا تو اس وقت وہ 40 سال کی تھی اور یہ 50 سال کی تھی, اس سے بھی 10 سال بڑی. پھر حضرت عائشہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر 54 سال کی تھی اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. اسی پہ لوگ گلہ کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں اوپر نیچے باقی نہیں دیکھتے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی. اور حضرت عائشہ سے شادی میں ایک تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بے اہمیت حاصل ہے, اس وقت میں لوگ منہ بولے بیٹے کی بیٹی کو بھتیجی سمجھتے تھے, تو یہ رسم ٹوٹی تھی آپ کی وجہ سے. دوسری, اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیسز دے دیے کہ کچھ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں بڑی عمر کے مرد کو چھوٹی عمر سے شادی کرنی پڑے. مثلا دیکھیے کہ ہر شادی ایسے نہیں ہوتی ویڈنگ ہالس میں جا کے اور ہوٹلوں میں اور کارڈ چھپ کے نہیں ہوتی. حالات دیکھیے, خدا ناستہ جنگ لگتی ہے. آپ مثال لیں, خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے کسی ملک میں, وہاں 5-6 سال کی لڑکیاں بچ جاتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ وہاں صرف بوڑھے ہیں. اب ان بوڑھے مردوں کو, ان لڑکیوں کو کیسے ان کے ساتھ اب رکھیں گے, کیا کریں, ان کی بیٹیاں بنیں گی, وہ تو جائز نہیں. تو کبھی ایکسیپشن, اور کبھی ایسا کم ہوتا ہے لیکن کبھی ہو تو موجود ہے کہ نکاح کر کے ان کی محرم بن کے ان کے ساتھ رہیں, نہ کہ غیر محرم بن کے رہیں. پھر حضرت حفصہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 55 سال کی تھی, حضرت حفصہ 22 سال کی تھیں. حضرت زینب بنت خزیمہ کے شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی اور آپ 30 سال کی تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 56 سال 56 تھی اور وہ 26 سال کی تھی 26. حضرت زینب کی شادی کے وقت 57 اور وہ 36 ایئر کی تھیں. اس سے پتہ چل رہا ہے نا, شادی میں عمروں کا فرق کوئی میٹر نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو اتنا بگ ایشو ہے, لڑکی 6 مہینے بڑی ہو جائے مشکل پڑ جاتی ہے. ہائے بڑی لڑکی نہیں, یہ تو پھر قابو ہی پالے گی. اور جنہوں نے قابو پانا ہوتا ہے وہ چھوٹی بھی پا لیتی ہیں. بڑی ہے تو کوئی سمجھ کے قابو پائے گی, جب چھوٹی ہیں وہ تو چالی میں ٹالی رہتی ہیں ہر وقت ہی, وہ اپنے ارد گرد ان کو لگائی رکھتی ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ کر دو اور وہ کر دو. تو یہ بھی ایک کلچر میں بدلنے کی چیز ہے جو آج بہت بڑی ہے. حضرت جویریہ جو تھی ان سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال 57 ایئرس کے تھے اور آپ حضرت جویریہ کی عمر 20 سال کی تھی. اور لوگ کیوں دیتے تھے اللہ کے نبی کو بیٹیاں, کسی سے مانگی تو نہیں, خود ہی دی نا لوگوں نے. लोगों को पता था देख इसको रहे हैं। ये हजरत आयशा के साथ नोट कर लें कि एक सवाल पैदा होता है कि भाई हजरत आयशा खुद तो भाग के नहीं आई थी, नौजुबिल्ला अबू बकर ने दी। अबू बकर को नहीं पता था 56 साल के बूढ़े शख्स से एक अपनी 9 साल की बेटी को दे रहा हूँ। वो तो इस पर बड़े खुश थे कि अल्लाह के नबी के साथ हमारा नसब जुड़े। इसी पे फिर रश करते हुए हज़रत अबू बकर के ऊपर रश करते हुए हज़रत उमर ने अपनी बेटी हफ्सा दी। ऐसे लगता है हर वक्त टो में रहते थे। अच्छा कि अल्लाह के नबी अबू बकर के दामाद भी, कभी हमारे जहन में तसव्वुर भी आता कि अल्लाह के नबी अबू बकर के दामाद थे? कभी रोब डाला, बैठ जाओ तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी तो बेहुदा बातें करते ही नहीं हैं पढ़े लिखे लोग। लेकिन हमारे यहाँ दामाद बन जाओ तो वैसी सर पे चढ़ने वाली बातें हैं। फिर भी अबू बकर की आजियाँ देखें अल्लाह के नबी के साथ। फिर इसके बाद आप देखिए कि हज़रत उम्मे हबीबा के साथ शादी पे 58 और 36 ईयर का फ़र्क था, हज़रत सफ़िया की शादी पे 59 और 17 ईयर्स का फ़र्क था, और हज़रत मैमूना 59 से 36 ईयर की फ़र्क थी। फिर इनकी शादी की मुद्दतें भी लिखी हैं, कब हुआ, कब तारीख क्या थी। 25 साल थे आपकी उम्र उस वक़्त। हज़रत सौदा आप 10 हिजरी को आपसे निकाह हुआ इनका, हज़रत आयशा से 1 हिजरी, हज़रत हफ्सा से 3 हिजरी, हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा से 4 हिजरी में, उम्मे सलमा से 5 हिजरी में, हज़रत ज़ैनब बिनत हजश से 5 हिजरी में। ज़्यादा निकाह आपके 5 हिजरी में हुए हैं अगर आप देखेंगे तो। फिर हज़रत जुवेरिया से निकाह 5 हिजरी में, उम्मे हबीबा से 7 हिजरी, हज़रत सफ़िया से 7 हिजरी, और हज़रत मैमूना से भी 7 हिजरी में। 7 हिजरी के बाद फिर कोई निकाह नहीं हुआ आपका, आपको पता है 8 से लेके आप सोचें कि आगे जो भी साल थे, क्यों कि आपकी बीवियों ने अल्लाह के नबी को चूज़ कर लिया था। सूरह अहज़ाब में ये आयतें आती हैं कि नबी की बीवियों अगर तुम रहना चाहती हो तो ऐसे ही रहो, नहीं तो जाओ हम तुम्हें आज़ाद करते हैं और तुम्हें माल और दौलत देते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अल्लाह के नबी आपको इख्तियार करेंगे। फिर आप देखिए कि तारीख़ वफ़ात देख लीजिए, हज़रत खदीजा 1090 में फ़ौत हुई, हज़रत सौदा जो थी 22 हिजरी में फ़ौत हुई, हज़रत आयशा 58 हिजरी, कितने साल ज़िंदा रही अल्लाह के नबी के बाद, 48 ईयर्स, नस सदी। क्यों छोटी उम्र में लाई गई थी, ताकि अल्लाह के नबी के सामने तरबियत पाएँ, इल्म सीखें और बाद में इल्म फैलाएं। और हज़रत आयशा बड़े बड़े सहाबा कराम और ताबईन की उस्ताद थी, इनके फतावा सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते थे। और इस वक्त भी हज़रत आयशा दूसरे नंबर पर आती हैं हदीस की रिवायत में, सबसे ज़्यादा हदीसें हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत हैं और दूसरे नंबर पर हज़रत आयशा से हैं। फिर हज़रत हफ्सा 45 हिजरी में, 45 हिजरी में, हज़रत ज़ैनब जो थी 4 हिजरी में, फिर हज़रत उम्मे सलमा 63 हिजरी में, हज़रत ज़ैनब बिनत जाहश 20 हिजरी में, जुवेरिया 50 हिजरी में, उम्मे हबीबा 44 हिजरी में, सफ़िया बिनत हुयई जो थी 50 हिजरी में, और मैमूना 51 हिजरी में हुई। आप देखें कि काफ़ी लंबा अरसा इन्होंने अल्लाह के नबी के बाद गुजारा हुआ है, किसी ने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि इनको एक ऑनर मिल चुका था लिहाजा वो उससे अलग नहीं हो सकती। फिर आगे इनकी टोटल उम्रें भी लिखी हुई हैं, तरतीब से बोल देती हूँ जो तरतीब आप नोट कर रहे हैं। हज़रत खदीजा से शुरू करके 65 साल की टोटल इनकी उम्र हुई, 75 साल, 66 साल, 64 साल, 30 साल, 84 साल, सुभान अल्लाह, 51 साल, 65 साल, 73, 60 और 60। सबसे ज़्यादा तवील उम्र किसने पाई, हज़रत उम्मे सलमा ने। फिर मुद्दत रफ़ाकत कितनी रही इनकी अल्लाह के नबी के साथ, हज़रत खदीजा 24 साल 6 महीने, सौदा 13 साल, आयशा 9 साल, सबसे कम नहीं कुछ और भी हैं, और हज़रत हफ्सा जो थी वो 8 साल आपके साथ रहीं, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा 3 महीने सिर्फ रहीं, फिर इनका इंतकाल हो गया था। बहुत सखी थी, इनका लकब भी है ज़ुल यदैन, लंबे हाथों वाली, कहते हैं ख़ुद मेहनत मजदूरी करती थी फिर उन पैसों को सदका कर देती थी। उम्मे सलमा जो थी 7 साल आपके साथ रहीं, हज़रत ज़ैनब 6 साल रहीं, जुवेरिया 6 साल, उम्मे हबीबा 6 साल, सफ़िया 3 साल, नौमा और हज़रत मैमूना भी 3 साल आपके साथ रहीं। और आगे हदीस की इनकी मुद्दत जो है, कितनी हदीसें इन्होंने की, हज़रत सौदा से 5, आयशा से कितनी है, 2210 रिवायतें। कितने साल रही हैं आपके साथ, पीछे देख ले 9 साल में। हज़रत हफ्सा से 60 हदीसें हैं, हज़रत उम्मे सलमा से 378, और हज़रत जुवेरिया से 7, हज़रत उम्मे हबीबा से 65, हज़रत सफ़िया से 10 और हज़रत मैमूना से 76। फ़र्क क्यों है भाई, यही तो कहते हैं कि इंसाफ ही नहीं करते बीवियों के साथ। क्या फर्क क्यों है, किसी से ज्यादा हदीस से किसी से कम क्यों है, बताइए सोचे जी सदब, क्या वजह जहन में आती है?
याद रखने का उनको था कि जिसको जिसके वो ज्यादा याद रहती थी वो ज्यादा पास हो चुकी है।
और कोई जी
यही उनकी अपनी जहनी सलाहियत के मुताबिक कि किस नजरिए से वो इस बात को अपने अंदर लेती थी।
देखिए कि हमारे यहाँ जो ये हदीस के साथ तसव्वुर आता है ना, मेरे भी दिन में कभी बचपन में यही आता था कि अल्लाह के नबी बैठ जाते होंगे और कहते हैं खोलो कापियाँ मैं लिखाऊँ हदीसें और लिखो, ऐसे नहीं होती थी हदीसें। हदीस ऐसे जैसे हम सुबह से शाम तक साथ रहे ना, तो कोई जो करे वो लिखते जाए, सहाबा किराम उसको लिख, कोई बोले तो लिख लिया, कुछ मना किया तो लिख लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखते थे तो खुद ही लिखते थे। इसमें जो ज़्यादा शगफ था हज़रत आयशा का इल्मी ज़हन था हज़रत आयशा के साथ। दूसरी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ जब होते थे तो बहुत सारे आपके जो निजी मामला थे वो हज़रत आयशा के ज़रिए से हमें मिले हैं। फिर एक और वजह ये कि हज़रत सौदा ने भी अपनी बारी हज़रत आयशा को दी थी, तो हज़रत आयशा का बुनियादी तौर पे जहन ज़्यादा था। बाकी बीवियाँ हो सकता है बच्चों वाली थी, उनके उम्रें थी, एक बहुत बड़ी वजह ये कि हज़रत आयशा अकेली थी, कोई बच्चों की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे हैं कि देखा हम जाए, तभी तो कहते हैं कि हमें नहीं, तो माशाल्लाह देखे समीना बैठी हुई है, माशाल्लाह 6 बच्चे हैं आपके, कितने हैं? अल्लाह ताला उनको नेक बनाए और आपकी आंखों की ठंडक बनाए कि आप उनको दीन का देखें, और 6 बच्चों के साथ ये आ रही है ना, और बच्चे भी साथ आ रहे हैं माशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं, ये एक नहीं ये कितनों पे भारी होंगे ना। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, सब बच्चों की भी हिफाजत करे, उन बच्चों वालों की भी हिफाजत करे। तो बहरहाल नबी सल्लम के पास ज़्यादा से ज़्यादा बीवियाँ एक वक्त में जो रहीं वो 9 रहीं, शादियाँ तो 11 हुई थी लेकिन 2 बीच में से इंतकाल होने के बाद दूसरी बीवियों की उनकी हुई। 5 हिजरी में हज़रत रेहाना और बतौर लौंडी हरम नबी में शामिल हुई, और 6 हिजरी के बाद नबी सल्लम ने हज़रत मारिया किप्तिया को बतौर लौंडी अपने हरम में शामिल किया। ये एक अलग टॉपिक है, और इसी हज़रत मारिया से ही आपका बेटा भी था जिन जो बचपन में फिर फौत हो गए थे। तो ये एक हल्का सा खुलासा था आपकी बीवियों के बारे में। बीवियों की बात आए तो फिर बच्चों की भी कर लेते हैं, ये आखिरी बात होगी इंशाल्लाह आज की नशिस्त की, कि आपकी औलाद क्या थी, ज़ुर्रियत ताहिरा पाकीज़ा औलाद। आपके बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए, बचपन में ही वफात पाई। हज़रत अब्दुल्ला थे दूसरे बेटे, जिनके 2 लक़ब है तैयब और ताहिर, ये भी हज़रत खतीजा से ही पैदा हुए और बचपन में वफात पाई। और तीसरे बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुए और बचपन में ही वफात पाई। बात लोग जो 4 बेटे कहते हैं ना तो उनको मुगालता लगता है हज़रत अब्दुल्ला में, वो तैयब और ताहिर 2 अलग को समझते हैं, लेकिन ये एक ही बच्चे के, तीनों ही बेटे आप सीखिए कि बचपन में फौत हो गए। इसी पे तो फिर मजाक उड़ाया था अबू लहब ने कि तू नस्ल बरीद है, जब आपके इस बेटे का इंतकाल हुआ था तो उस पे फिर सूरत नाजिल हुई थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन नशानियका हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन ही जड़ कटा है, हम तो आपको हौज़े कौसर दे रहे हैं, यानी लोग तो सिर्फ बेटों में खो गए, आपको तो अल्लाह क़यामत के मैदान में भी इतनी इज्जत देगा। तो बहरहाल आपकी बेटियाँ कितनी थी, आपकी 4 बेटियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू लास के निकाह में आई। इनका भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़िया हिजरत करने का और ईमान लाने का, कहीं मौका मिला तो सुना दूंगी। हज़रत रुकैया थी हज़रत उस्मान के निकाह में आई। हज़रत उम्मे कुलसूम थी, ये भी हज़रत उस्मान के निकाह में आई। कब? जब हज़रत रुकैया का इंतकाल हुआ, सन 2 हिजरी में हज़रत रुकैया का इंतकाल हुआ था, जो हज़रत उस्मान के निकाह में थी। और 4थी बेटी आपकी थी हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में आई। आपके नवासे नवासियाँ कितने थे, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत अली बेटा था, नाम उसका नहीं पता, हज़रत उमामा पैदा हुए, हज़रत रुकैया से अब्दुल्ला पैदा हुए, और उम्मे कुलसूम से कोई औलाद नहीं थी, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत हसन हुसैन हज़रत मोहसिन उम्मे कुलसूम रुकैया और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, ये सब बच्चे पैदा हुए हज़रत फ़ातिमा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत आपकी 2 बेटियों हज़रत रुकैया और फ़ातिमा से बाकी चली आ रही है। हज़रत रुकैया की औलाद سادات بن رقیہ کے نام سے اور حضرت فاطمہ کی اولاد سادات بنی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، اور آل محمد سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کے پیروکار اور متبع ہیں، خواہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ ساری چیزیں دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ تو اس سارے خلاصے سے فائدہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید آگہی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی اس طرح جانے جیسے کہ وہ تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔